हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम का वक्त था, तीनों जोड़ों को शगुन की मेहंदी लग चुकी थी, नाच गाने से महफिल में रंग जमा हुआ था और दुल्हनों को मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी थी। बाकी सब भी अपने में व्यस्त थे। अर्णव ने मौके का फ़ायदा उठाया और धृति की ओर खिसकते हुए उसके करीब होकर बैठ गया। धृति, मेहंदी में आज मेरा नाम भी लिखवाओगी ना तुम? दुल्हने लिखवाती है ना शादी की मेहंदी में अपने होने वाले पति का नाम? अर्णव की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनकर धृति ने सर घुमाकर उसे देखा। अर्णव लबों पर कातिलाना मुस्कान सजाए कशिश भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक्साइटमेंट भी साफ झलक रही थी। उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर धृति के लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई और उसने सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल लिखवाऊंगी। आप मेरे होने वाले पतिदेव हैं तो अपनी मेहंदी में आपका नाम तो मुझे लिखवाना ही होगा। मैं ना अपनी हथेली पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाऊंगी मिस्टर अक्कड़चंद, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे धृति बोल रही थी वैसे वैसे अर्णव के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। अंत में आते आते उसके चेहरे पर हैरत के भावों भर आए, जिसे देखते हुए धृति ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही मासूमियत से सवाल किया, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? आपने ही तो पूछा था कि मैं आपका नाम लिखवाऊंगी या नहीं, मैंने तो बस आपके उसी सवाल का जवाब दिया है। मतलब मेरा नाम अर्णव से मिस्टर अक्कड़चंद हो गया है? अर्णव के चेहरे पर हैरत व गुस्से के मिले जुले भाव मौजूद थे। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शाम का वक्त था, तीनों जोड़ों को शगुन की मेहंदी लग चुकी थी, नाच गाने से महफिल में रंग जमा हुआ था और दुल्हनों को मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी थी। बाकी सब भी अपने में व्यस्त थे। अर्णव ने मौके का फ़ायदा उठाया और धृति की ओर खिसकते हुए उसके करीब होकर बैठ गया। धृति, मेहंदी में आज मेरा नाम भी लिखवाओगी ना तुम? दुल्हने लिखवाती है ना शादी की मेहंदी में अपने होने वाले पति का नाम? अर्णव की फुसफुसाहट की आवाज़ सुनकर धृति ने सर घुमाकर उसे देखा। अर्णव लबों पर कातिलाना मुस्कान सजाए कशिश भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक्साइटमेंट भी साफ झलक रही थी। उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर धृति के लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई और उसने सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल लिखवाऊंगी। आप मेरे होने वाले पतिदेव हैं तो अपनी मेहंदी में आपका नाम तो मुझे लिखवाना ही होगा। मैं ना अपनी हथेली पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाऊंगी मिस्टर अक्कड़चंद, ताकि आपको ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। जैसे जैसे धृति बोल रही थी वैसे वैसे अर्णव के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। अंत में आते आते उसके चेहरे पर हैरत के भावों भर आए, जिसे देखते हुए धृति ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही मासूमियत से सवाल किया, अरे आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? आपने ही तो पूछा था कि मैं आपका नाम लिखवाऊंगी या नहीं, मैंने तो बस आपके उसी सवाल का जवाब दिया है। मतलब मेरा नाम अर्णव से मिस्टर अक्कड़चंद हो गया है? अर्णव के चेहरे पर हैरत व गुस्से के मिले जुले भाव मौजूद थे। भौहें तनी हुई थीं और उसकी गहरी काली स्याह आँखें खतरनाक अंदाज में धृति को ही घूर रही थीं। पर धृति पर इसका कोई असर ना हुआ। अर्णव के गुस्से से वो पूरी तरह बेअसर रही और मासूम बनते बेफिक्री भरे अंदाज में बोली, हाँ ये नाम ना मैंने रखा है आपका प्यार से, सूट करता है ना आप पर। धृति की मुस्कुराहट देखकर अर्णव खींच उठा और गुस्से में उसने अपने जबड़े भींच लिए। धृति, मैं तुम्हें अकड़ू लगता हूँ? इसमें लगना क्या है, आप हैं एक नंबर के अकड़ू, बदमाश, चालाक और शातिर आदमी। एक बार फिर धृति ने बड़े ही लापरवाही से झट से हामी भर दी। वहीं उसका ये जवाब सुनकर अर्णव पल भर गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरता रहा। अगले ही कुटिलता भरी जहरीली मुस्कान उसके लबों पर बिखर गई। ये देखकर धृति के चेहरे के भाव कुछ बदले और माथे पर सिलवटें डाले वो गहरी निगाहों से उसे देखने लगी, पर अफसोस कि अर्णव के शैतानी दिमाग की थाह न पा सकी। वहीं उसे यूं परेशान होते देखकर अर्णव की आंखें चमक उठी और होंठ कोने से हल्के से मुड़ गए। ओ ऐसा है क्या, फिर तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखवाने के जगह मेरी जिद्दी, लड़ाकू, नकचिड़ी, बेवकूफ़ और पत्थर दिल, अनरोमांटिक बीवी लिखवा लूँ। सूट करता है तुम पर, शातिर था अर्णव, जैसे को तैसा देना बहुत अच्छे से जानता था। धृति को करारा करारा जवाब दिया था उसने, नहले पर दहला फेंक कर मारा था। धृति के चेहरे की रंगत उड़ी थी और फटी आंखों से वो अचंभित सी उसे देखती ही रह गई थी। क्या हुआ, अपना नाम पसंद नहीं आया? अर्णव ने भौं उछालते हुए इनोसेंट सी शक्ल बनाते हुए सवाल किया। धृति का पैंतरा उसने उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था और उसकी इस हरकत से धृति सर से लेकर पैर तक सुलग उठी। उसके चेहरे पर उभरते गुस्से के भाव देखकर अर्णव शातिर अंदाज में मुस्कुराया। अब लिखवाओ तुम मेरे नाम की जगह मिस्टर अक्करचंद, फिर मैं भी लिखवाता हूँ तुम्हारे ये प्यारे और यूनिक नाम। धमकी ही थी ये जिसे सुनकर धृति मन ही मन खींच उठी, पर कुछ कह न सकी। बस गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरती रही और अर्णव दिल चलाने वाली तीखी मुस्कान लबों पर सजाए उसे चिढ़ाने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब लो मुझसे पंगे। एक तरफ इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर छिड़ गई थी, तो वहीं कबीर और माधुरी के दरमियान प्यार भरपूर अंगड़ाई ले रहा था। दोनों साथ बैठे मेहंदी लगवा रहे थे, उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट और खुशी साफ झलक रही थी, और धृति वार्णव की बहस से पूरी तरह से अनजान वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे अपनी ही बातों में मग्न थे। अब चलते हैं सबसे आखिरी जोड़े के पास। निहारिका भी काफी खुश नजर आ रही थी और बड़े ही शौक से अपने हाथ पैर में मृणाल के नाम की मेहंदी लगवा रही थी, जबकि मृणाल शगुन की जरा सी मेहंदी लगवाने के बाद लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए अक्षु के साथ खेलने में मग्न कुश को देख रहा था, जिसे उससे कोई मतलब नहीं रह गया था। वो कुछ देर उसे देखता रहा। यहाँ आकर कुश कितना खुश रहने लगा था। अक्षु के रूप में उसे एक दोस्त मिल गया था, तो उसे परेशान भी कम करने लगा था, और सारा सारा दिन दोनों बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं थे। मृणाल की नज़र कुछ से हटी तो निगाहें निहारिका के चेहरे पर जा ठहरी, जिस पर उसकी खुशी नूर बनकर बिखरी थी और लबों पर दिलकश मुस्कान सजी थी। कितनी खुश लग रही थी वो इस वक्त। उसे देखते हुए मृणाल यही सोच रहा था कि क्या वो कुश और निहारिका को एक साथ खुश रख पाएगा। तभी निहारिका की नज़र उस पर पड़ गई और इसके साथ ही उसके मुस्कुराते लब सिमट गए। हे, तुम बैठकर मुझे क्या देख रहे हो? तुम नहीं लगवाओगे मेहंदी? निहारिका की आवाज़ मृणाल के कानों में पड़ी और वो चौंकते हुए होश में लौटा। निहारिका की बातें सुनकर उसके चेहरे पर विचलित भाव उभर आए और वो परेशान निगाहों से उसे देखते हुए सकपकाते हुए बोल पड़ा, मैं कैसे लगवाऊंगा? अगर मैं मेहंदी लगवाऊंगा तो कुश को कौन संभालेगा? लोगों की कमी है क्या यहाँ? अभी कौन सा तुम कुश को अपनी गोद में लेकर बैठे हो? वो तो मजे से अक्षु के साथ खेलने में लगा है, इसलिए बहाने बनाना बंद करो और चुपचाप मेहंदी लगवाओ, वरना मैं भी नहीं लगवाऊंगी मेहंदी। ये कोई बात होती है भला? मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने हाथ पैर सब में मेहंदी लगवा रही हूँ और तुम कुश का बहाना बनाकर बचने की फिराक में हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब बताओ, तुम लगवाते हो या मैं उठूँ यहाँ से? निहारिका ने उसे तबीयत से झाड़ा था और साथ ही धमकी भी दे डाली थी। अंत में वो अपने फैसले पर दृढ़ता से खड़ी भौं सिकोड़े मृणाल को देखने लगी थी। मृणाल बेचारा अजीब दुविधा में फंस गया था। उसने बेचारगी से निहारिका को देखा, पर रियायत का कोई चांस ही नहीं था। अंत में निहारिका की जिद और धमकी के आगे उसे झुकना ही पड़ा, वरना उसका कोई भरोसा कहाँ था। पता लगे वो सच में आधी मेहंदी लगवा कर ही उठ जाती। मृणाल ने हामी भरी कि निहारिका के लबों पर गिलफरेब मुस्कान बिखर गई। आप मुझे छोड़कर पहले इन्हें लगा दीजिए और इनकी मेहंदी में मेरा नाम भी लिख दीजिएगा। निहारिका ने अपने पैर में मेहंदी लगाती मेहंदी वाली को मृणाल को मेहंदी लगाने को कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर जो खुशी झलक रही थी, मृणाल की निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गईं और मन में कई ख्याल उमड़ने लगे। मृणाल को मेहंदी लगते देखकर नन्हा कुश दौड़ते हुए उसके पास चला आया और टुकुर टुकुर बड़े ही ध्यान से उसकी हथेली को देखने लगा। तीनों जोड़ों को मेहंदी लगी तो उन्हें उनके कमरे में भेज दिया गया। दोनों बच्चों को आज राजेश जी संभाल रहे थे, क्योंकि अंजलि जी ने भी मेहंदी लगवाई हुई थी। खैर, रात बीत गई थी और अगला दिन शुरू हो चुका था, पर बीते दिन देर रात तक चली मेहंदी की रस्म के कारण थकान से चूर सभी लोग अब भी गहरी नींद में सोए हुए थे। तीनों लड़कियां भी रात के खाने के बाद संगीत की प्लानिंग में लगी थी और अभी घोड़े बेचकर सो रही थी। अचानक ही उस सन्नाटे में फोन के रिंग होने की आवाज गूंजी और गहरी नींद में सोई धृति नींद में झूलते हुए उठकर बैठ गई। नींद की खुमारी अब भी उसके सर पर सवार थी। नींद में बड़बड़ाते हुए उसने साइड में रखा अपना फोन उठाया और आंख खोलकर ये तक देखने की जरूरत न समझी कि आखिर फोन है किसका। कॉल रिसीव की और फोन कान पर लगाते हुए वापस लेट गई। गुड मॉर्निंग धृति, दूसरे तरफ से अर्णव की फ्रेश आवाज आई, जिससे साफ जाहिर था कि वो उठ चुका है और सुबह सुबह काफी एनर्जेटिक भी है। धृति ने नींद की वादियों में खोते हुए धीरे से मुंह से आवाज निकाली और दूसरे तरफ मौजूद अर्णव के चेहरे पर हैरत के भाव उभर आए। धृति, तुम अभी तक सो रही हो?
एक बार फिर उसने नींद में ही जवाब दिया। लग तो रहा था जैसे अभी उसका उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो। वेक अप धृति, सुबह हो गई है। मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करूंगी आपसे, बाय, धृति ने अलसाते हुए जवाब दिया और फोन को कान पर से हटाकर बगल में रखते हुए सो गई। बेचारा अर्णव हेलो हेलो करता रहा, पर जब धृति की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने कॉल कट किया और दोबारा कॉल लगा दी। फोन एक बार फिर बजा, जिससे धृति की नींद में खलल पड़ी और अब की बार खींचते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी। क्या परेशानी है आपको मुझसे? चैन से सोने क्यों नहीं दे रहे आप मुझे? धृति की चिढ़ भरी अलसाई आवाज सुनकर अर्णव पल भर को चुप रह गया, फिर आवाज में सख्ती लाते हुए उसने लगभग उसे हुक्म सुना दिया। बैक साइड के लॉन में इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, अपनी नींद को परे झटको और 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचो। अगर 1 मिनट भी इधर से उधर हुआ तो मैं वहाँ आ जाऊँगा, जो यकीनन ना तो तुम्हारे लिए ठीक होगा और ना ही तुम्हें अच्छा लगेगा। अपनी बात कहकर और धृति को धमकाने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। धृति, जिसके सर पर अब भी नींद की खुमारी छाई हुई थी, उसने अपनी आंखों को मसलते हुए उनींदी आंखों से अपने बगल में सो रही दोनों लड़कियों को देखा, फिर झुंझलाते हुए फ़ोन वहीं पटक कर बेड से नीचे उतर गई। अपने खुले बिखरे बालों में समेटकर जुड़े में बांधा और स्लिपर पैरों में फंसाते हुए नींद में झूलते हुए अर्णव के हुक्म की तालीम करने के लिए निकल गई। कुछ देर बाद धृति लॉन में अर्णव के सामने खड़ी थी। क्यों बुलाया है आपने मुझे सुबह सुबह यहाँ? इतनी नींद आ रही है मुझे, और आपने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। धृति ने खींचते हुए मुंह बनाया और अपने गोल मटोल गालों को फुलाए नाराज़गी भरी निगाहों से उसे देखने लगी। अर्णव ने बागौर उसे देखा था। ढीली सी टी शर्ट और प्लाजो पहना हुआ था उसने। टी शर्ट उसके कंधे से नीचे सरक रही थी, बालों को यूं ही समेट कर जुड़ा बना लिया था, जिससे निकलती लटें उसके चेहरे पर बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। उसके मासूम से मुखड़े पर बिखरती सूरज की किरणें उसके रूप को निखार रही थी। नींद से अलसाया शरीर और बार बार झुकती उठती पलकों के पीछे छुपी वो सुर्ख आँखें, कितनी प्यारी लग रही थी वो इस वक्त। अर्णव जो अपलक उसे निहार रहा था, उसका सवाल सुनकर उसने अपने बहकते दिल को फटकार लगाई और भौं उचकाते हुए सवाल किया, अभी सुबह नींद आ रही है तुम्हें? रात को क्या जागरण करने बैठी थी जो अब आंख भी नहीं खुल रही तुम्हारी? माधुरी और निहारिका की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी और उन्होंने मुझे भी सोने नहीं दिया। धृति ने बुरा सा मुंह बनाया और पल भर को अर्णव को अपनी इस मासूम महबूबा की हालत पर तरस आ गया। उसने अपनी सख्ती को त्यागा और अपनी बड़े ही प्यार से पुचकारते हुए बोला, अच्छा इधर आओ मेरे पास। अर्णव ने अपनी बाहों को फैलाते हुए उसे अपने पास बुलाया, पर धृति ने अपनी आंखों को मसलते हुए इनकार में सर हिला दिया। नहीं, आप काम बताइए, मुझे वापस जाकर सोना है। मैंने तो तुम्हारी मेहंदी देखने के लिए तुम्हें बुलाया था। अर्णव ने जैसे ही उसे बुलाने की वजह बताई, धृति ने झट से अपनी दोनों हथेलियां उसके आगे कर दी। देख लीजिए मेरी मेहंदी और मुझे इजाज़त दीजिए। अर्णव की निगाहें पल भर को उसकी मेहंदी रची हथेलियों पर ठहरी। कितना गहरा रंग चढ़ा था मेहंदी का, बिल्कुल उतना ही गहरा जितना उसकी मोहब्बत का रंग चढ़ा था अर्णव पर। अर्णव के लब मुस्कुराए और उसने धृति की कलाई थामते हुए झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। धृति बिन डोर की कटी पतंग जैसे उसकी ओर खिंचती चली आई और उसके चौड़े फौलादी सीने से टकरा गई। अर्णव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सुबह की पहली किरण से उजली और दिलकश लग रही हो अभी तुम, इस बिखरे बिखरे वजूद में अलसाई हुई सी इतनी प्यारी लग रही हो कि दिल चाह रहा है तुम्हें अपने सीने में छुपा लूँ। अर्णव ने धृति के कान में सरगोशी की। उसके सीने से लगी धृति के लबों पर हल्की मुस्कान उभर आई और उसने अर्णव की पीठ पर अपनी बाहों को लपेटते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। मुझे कुछ देर ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके पास, इतना कहकर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद जब अर्णव को एहसास हुआ कि धृति उससे लिपट कर सो चुकी है, तो उसके लब मुस्कुरा उठे। उसने उसको अपनी बाहों में उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। धृति को उसने बहुत ही आराम से बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके पास बैठकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। उसके लबों पर बिखरी मुस्कान उसकी खुशी जाहिर कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। चलिए बताइए, ये अलसाई हुई धृति और उनका प्यार भरा मीठा सा रोमांस कैसा लगा आपको?